गुजारिश है क्लास शुरू करने से पहले कि जो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना नाम लिख करके एंटर हुआ करें। उन्होंने अपनी एब्रिविएशन वगैरह लिखी हुई है या कोई और सूडो नेम टाइप की कुछ चीज़ें, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपना असल नाम लिख करके एंटर हों जिस तरह बाकी सब ने किया हो। ये खवातीन की क्लास है, तो अगर तो आप मर्द हैं तो वैसे भी आपको नहीं आना चाहिए। तफसीर की क्लास तक तो ठीक है क्योंकि ये आजिज पढ़ा रहा होता है, तो तफसीर की क्लास तो मर्द भी सुन सकते हैं, लेकिन जो फिक्ह और हदीस की क्लास होती है तो वो खवातीन ही के लिए होती है खाली। तो गुजारिश है कि आप अपने असल नाम से आ जाएं, और अगर आप मर्द हैं तो सिर्फ तफसीर की क्लास के हद तक ही इसके अंदर शामिल रहें। जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. वॉल्यूम कम होने की वजह غالباً पंखे का शोर है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। एक मिनट। जी, उम्मीद है कि अब थोड़ी बेहतर होगी। तो ये जो आयतें हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, ये सूरह फुरकान की आखिरी आयात है जिनमें अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों की सिफात बयान फरमाई है। तो इन सिफात को बयान फरमा के अल्लाह ताला ने हम सब के लिए जो कलमा गो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत का और नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का, आखिरी नबूवत का ऐला का इकरार करते हैं, अपने दिल से तस्दीक करते हैं, जुबान से इसका इकरार करते हैं, तो हम सब के लिए अल्लाह ताला ने टारगेट सेट कर दिया है, गोल सेट कर दिया है कि ऐसा तुमने बनना है कि जैसे कि मेरे ये खास बंदे होते हैं, ठीक है। और ये हो गुजर चुके हैं इस दुनिया के अंदर ऐसे बंदे, और इस दुनिया के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं, हर दौर हर जमाने के अंदर ऐसे बंदे मौजूद रहते हैं। तो ये है हमारा टारगेट, ऐसे बंदे बनना। ये बंदे जो हैं ये अल्लाह ताला ने बाकायदा इस दुनिया के अंदर ना पैदा फरमाए हैं। ये कोई थियोरेटिकल टारगेट नहीं है, ये कोई किताबी शक्ल की चीज़ नहीं है कि किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो तुम फॉलो कर लो, ठीक है। अल्लाह ताला का एक अंदाज है ना बात समझाने का, बात करने का, ठीक है ना। ये भी तो हो सकते थे कि तुम ऐसे बन जाओ, ठीक है ना, कि जमीन पर चलो तो आंखें झुका करके चलो, ये हुक्म होता है, ठीक है ना। तुम्हारी आंखें झुकी होनी चाहिए और तुम जो है वो सारी सारी रात इबादत में गुजारने चाहिए, तुम्हें चाहिए। और जब तुमसे कोई जाहिल लोग कलाम करें तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनको सलाम से जवाब दो। ये भी तो एक अंदाज हो सकता था ना बात करने का, लेकिन अल्लाह ताला ने ये अंदाज इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि अपने बंदों का तذکرہ शुरू किया। इबादुर रहमान अल्लज़ीना, वो जो के, राइट। तो ये एक डिफरेंट अंदाज होता है बात करने का ना। यही अंदाज देखें कुरान मजीद के अंदर, ये शुरू से चला आ रहा है, سورہ فاتحہ جو کہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں دن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اسی طریقے سے بات فرمائی کہ کہ الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہی ہم دعا مانگتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دیجئے، لیکن یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط القرآن والحدیث، قرآن کا راستہ اور حدیث کا راستہ نہیں، بلکہ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جو انعمت علیہم، تیری نعمت ہوئی ان کے اوپر، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نا بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بیکوز بندے ہی اصل چیز ہیں، یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا یہ بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اس کائنات کا محور ہیں، فوکس ہیں، مقصود ہیں ان کے بنانے، اس کائنات کو بندوں کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بندے ہیں نا عباد الرحمن، یہی اصل ہیں، یہی اصل ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انہی سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی باتیں کرتے ہیں، انہی کے اوپر ناز کرتے ہیں، رائٹ؟ کہ دیکھو میرے بندے، کیا میرے بندے ہیں، فرشتوں کے اوپر ناز نہیں کرتے، جنوں کے اوپر ناز نہیں کرتے، اپنے سورج چاند ستاروں کے اوپر ناز نہیں کرتے، بلکہ کس چیز کے اوپر ناز کرتے ہیں؟ اپنے ان انسان بندوں کے اوپر ناز کرتے ہیں، جن کو کبھی کہتے ہیں الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کبھی کہتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رائٹ؟ یہ بندے ہیں اصل، تو بندوں کی اہمیت جو ہے نا، مقصد اس کا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں بندوں کی اہمیت آ جائے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اس انداز سے سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹارگٹ جو ہے یہ ہم نے اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں اس دنیا میں نا اسی لیے بھیجا گیا ہے، کھانے پینے اور موج اڑانے کے لیے اور تفریح کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ آبسٹیکلس رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان آبسٹیکل سے ہمیں بچنا بھی ہوتا ہے، تو بچ بچا کر کے اس راستے کو ہم نے یعنی کراس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں۔ اب ان بندوں کی مخصوص صفات و علامات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر 13 بیان کری ہیں، 13، تو ان کی مختصر جو سمری تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی پیج نمبر 502 کے اوپر، کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سمری کے اندر کیا لکھا تھا کہ عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں، خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی کرتے ہیں، رائٹ؟ سب سے پہلی چیز عقائد کے اندر اور اعمال کے اندر اللہ کی مرضی کی پابندی کرتے ہیں، دوسرے انسان کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا، تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اوپر آپ کی کلاس میں شاید بات نہیں ہوئی تھی، لیکن مردوں میں بات ہوئی تھی کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام سے کیا مراد ہے؟ بھئی ایک چیز ہوتی ہے گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر صرف گناہوں سے بچنا کیوں نہیں فرمایا، یہاں پر ایک ایکسٹرا چیز فرمائی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہتمام کا مقصد، اہتمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال سے اگر ہم اس کو سمجھیں، ایک دو مثالوں سے، ایک مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ना देखने का हुक्म फरमाया कि तुम इन चीजों को मत देखो, ठीक है ना। قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن, राइट। मर्दों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, और औरतों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीचा कर लो। नीचा कर लेने का मतलब ये है कि मत देखो इन चीजों को, ठीक है। अब कभी अपनी निगाहों को बचाने के लिए उनको नीचा करना पड़ता है, और कभी नीचा करने से उल्टा और मुसीबत हो जाती है, तो कभी निगाहों को ऊंचा भी करना पड़ता है ना देखने के लिए, ठीक है ना। कभी निगाहों को दाएं बाएं भी करना पड़ता है ना देखने के लिए। मकसद क्या है? मत देखो, सिर्फ नीचे नीचे ना कर लो, बल्कि मकसद ये है कि मत देखो, ठीक है। तो अब अगर किसी इंसान के सामने कोई ऐसी मिसाल के तौर पर गंदी तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं, मर्दों की बात उमूमन यही यही उनके सारे मसले चल रहे होते हैं, निगाहों को काबू नहीं कर पाते हैं, राइट। कोई आगे से नमूना गुजरा उसको देखना शुरू हो गए, कोई तस्वीर गुजरी उसको देखना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो उसको देखो नहीं। टीवी के ऊपर मिसाल के तौर पर, है ना, टीवी के ऊपर कोई ऐसी खातून आ गई, कोई ऐसी जो है वो सीन आ गया, कोई ऐसा जो है वो हरकत आनी शुरू हो गई, तो अपनी निगाहों को नीचा कर लिया या हटा लिया, देखा नहीं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गुनाह से बचना, गुनाह से बच गए, ठीक है। अब आपसे हम सवाल करते हैं कि गुनाह से बचना तो ये हो गया कि टीवी के ऊपर जब ऐसी कोई चीज आई तो उसको नहीं देखा। अब गुनाह से बचने का एहतमाम क्या कहलाएगा? क्या ये गुनाह से बचने का एहतमाम भी कहलाएगा कि टीवी के ऊपर नहीं देखा, ठीक है? क्या ये एहतमाम भी कहलाएगा? नहीं, ये एहतमाम नहीं कहलाएगा। तो फिर एहतमाम क्या कहलाएगा, ये आपसे सवाल करते हैं। एहतमाम क्या कहलाएगा गुनाहों से बचने का? एहतमाम, मैंने टीवी की मिसाल दी है तो टीवी के मुताबिक ही जवाब देना चाहिए आप, ठीक है भाई। मिसाल मिसाल की बात हो रही है ना, मिसाल, ठीक है। तो मिसाल में रहे ना, अभी आप जो है मिसाल को छोड़ करके जो है वो आफाक में पहुंच गए, ठीक है भाई। बात को समझ करके उसको उसका जवाब उसके मुताबिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जवाब सही है, टीवी ही ना रखें, ये जवाब सही है। टीवी ही ना देखें, घर में टीवी होना ही नहीं चाहिए, ये है गुनाह से बचने का एहतमाम, सही है। बदनजरी के गुनाह से बचने का एहतमाम ये है कि टीवी ही नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी मिसाल भी बहुत जरूरी है, वो ये है जी, माशाल्लाह जिन्होंने ये जवाब दिए बहुत खुशी हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरी मिसाल कि आप अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई हैं और दोस्तों ने जो है ना वो एकदम से गीबत शुरू कर दी, ठीक है। किसी के बारे में जो है वो तो ऐसी है, वो तो ठिंगनी सी है, और उसकी तो इसके जिस तरह करते हैं गीबतें किसी के बारे में, ठीक है। तो आपने क्या कहा? ओहो, मैंने क्लास में सुना था कि जी गीबत जो है ना ये तो हराम है, और गीबत तो ऐसी चीज़ है और जना से भी ज़्यादा बदतर चीज़ है। तो आप जो है ना वो वहां से उठ करके चली गई, ठीक है ना। तो आपने गीबत सुनी ना आपने गीबत करी, तो आप गुनाह से बच गई, ठीक है, गुनाह से बच गई। अब इसी मिसाल के बारे में, इसी मिसाल में जवाब दें कि गुनाह से बचने का एहतमाम क्या होता। जी, ऐसे दोस्त ही ना बनाएं या दोस्ती छोड़ दें, ठीक है ना। ये जो सर्कल है ना आपका, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, कि जिसके अंदर गीबतें होती हैं, जिसके अंदर बुराइयां और नाजायज चीजों के बारे में बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर बैठ करके जो है वो गैर महरम मर्दों के बारे में बात कर रही हैं, है ना, बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में बात कर रही हैं, हॉलीवुड के बारे में बात कर रही हैं, फिल्मों, ड्रामों, मौसीकी के बारे में बात कर रही हैं, तो ऐसे दोस्तों को ही छोड़ देना, दोस्त बदल लेना, नेकों को दोस्त बना लेना, ठीक है, ये कहलाएगा गुनाहों से बचने का एहतमाम करना, ठीक है। तो गुनाहों से बचना एक चीज होती है, गुनाहों से बचने का एहतमाम करना दूसरी चीज होती है, ठीक है। तो जो इबादुर रहमान होते हैं ना, वो सिर्फ गुनाहों से बचते नहीं है, बल्कि वो गुनाहों से बचने का एहतमाम करते हैं। पिछले दिनों जो आप में से सुलूक के रास्ते के ऊपर भी कुछ मेहनत कर रही हैं, ठीक है, तो उनको शेयर किया था ना, निस्बत का मुकाम, निस्बत क्या चीज़ होती है और निस्बत के क्या दर्जे होते हैं, बाकी लोगों से माजरत के साथ के उनको इन चीज़ों का नहीं पता होगा। तो निस्बत के क्या दर्जे थे, निस्बत इनकासी, फिर निस्बत इल्काई और फिर निस्बत इस्लाही, ठीक है ना। तो निस्बत इल्काई क्या थी कि जिसके अंदर इंसान इतना अपने आप पे मेहनत कर लेता है कि वो गुनाहों से बच जाता है, ठीक है ना, गुनाहों से बचना शुरू कर देता है, गुनाह कबीरा से बचना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, उसकी जिंदगी में जो है वो अच्छी खासी तब्दीली आ जाती है, ठीक है। तो ये जो निस्बत इल्काई है ना, दूसरे दर्जे की निस्बत, जिसके अंदर के इंसान गुनाहों से बचना शुरू हो जाता है, ये गुनाहों से बचना ही है, ठीक है ना। लेकिन जब वो गुनाहों से बचने का एहतमाम करना शुरू कर देता है ना, तो अब वो अगले दर्जे पर पहुंचता है निस्बत के, ठीक है ना, अब उसके अंदर निस्बत इस्लाही आती है। मतलब कहने का क्या कि निस्बत इस्लाही ये गुनाहों से बचने का एहतमाम करने के ऊपर आती है, सिर्फ गुनाहों से बच जाने से नहीं आती है। गुनाहों से बच जाना जो है ना, एक नीचा दर्जा है, एक लोअर दर्जा है, ठीक है, और हायर दर्जा क्या है, एहतमाम करना, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरह अपने आप के लिए एहतमाम करते हैं, उसी तरह अपने औलाद और अजवाज के लिए भी, कि उनके लिए भी माहौल बनाना, बुरे माहौल से उनको बचाने की कोशिश करना, ठीक है ना, ये नहीं करना कि उनको जो है वो समंदर में फेंक दिया और फिर उनसे हुक्म दिया, उनको हुक्म दे रहे हैं कि जी गीले मत होना, तुम बच्चों को जो है गुनाहों के समंदर में खुद जा करके फेंक कर आ गए, ठीक है ना, जैसे अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और इस किस्म के और जो यानी जो गंदे माहौल होते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमारा बच्चा भी ज़रा सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हमारे बच्चे को भी जो है ना लोग जो है वो यानी इस तरह से सोशली जो है ना वो बड़ा एक्टिव समझें, बड़ा जो है वो उसके अंदर भी जो है ना वो यानी एक्सेप्टेबिलिटी टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो बस उसको जो है ना वो हमने तो किसी अमेरिकन स्कूल में दाखिल कराना है, किसी ब्रिटिश स्कूल में दाखिल कराना है, किसी और ऑस्ट्रेलियन या जो भी इस किस्म के गोरे टिटक टाइप के स्कूल होते हैं, है ना, उधर दाखिल कराना है। अच्छा, साथ साथ जो है वो हिदायत की क्लासें भी ज्वाइन करी हुई हैं, तो अब हिदायत की क्लासें जो ज्वाइन करी हुई हैं तो उससे जो है ना ये भी सुनते रहते हैं कि हाँ भी नेक बनना चाहिए और ये है ना गुनाहों से बचना चाहिए, और तो अब जो है ना बच्चे से डिमांड कर रहे हैं कि तुमने गुनाह नहीं करना है ना, तुमने जो है ना वो यानी कोई हराम नहीं करना है, ना हराम खाना है, ना हराम पीना है, ना हराम जो है वो काम करने हैं, ठीक है, लेकिन फेंका हुआ किधर है उसको, गुनाहों के समंदर में फेंका हुआ है, ठीक है, और हुक्म क्या कर रहे हैं कि तुम इस गुनाहों के समंदर में गीले भी मत होना, ठीक है, तो ये तो जुल्म है ना बच्चों के ऊपर, सही है। तो इस तरह के जो जुल्म है ना वो ना करना, तो बच्चों के लिए अच्छे माहौल का इंतजाम करना, ठीक है, बुरे माहौल में फेंक मत देना उनको उठा करके। पता है ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है इस दुनिया को, सबसे बड़ा फायदा इस दुनिया को क्या हुआ है इस आजिश से, अगर सुने ना, तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। अच्छा आपसे पूछते हैं, आप बताएं, कोरोना वायरस का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, ठीक है, अगर मीडिया भी बंद हो जाता तो एक और फायदा हो जाता, लेकिन मीडिया तो बंद करना नहीं है उन्होंने, लेकिन मीडिया जो के अंदर जो जो गलाजत है, राइट, ये कहाँ से आती है ये गलाजत, ये फरिश्ते तो नहीं आकर के गलाजत फैलाते हैं, ये जिन तो आकर के गलाजत नहीं फैलाते हैं, ये इंसान गलाजत फैलाते हैं ना मीडिया के जरिए से, झूठ और बेहयाई और मौसीकी और ये सारी चीजें, तो ये इंसान कहाँ से बन के निकले हैं, ये जो मीडिया के अंदर हम कहते हैं ना मीडिया सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत सारे दीनदार लोग अब मीडिया को गुनाहों का समझते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है मीडिया में जो ये गुनाह फैलाने वाले लोग हैं ये कहाँ से बन के तैयार होते हैं, इनकी तरबियत कहाँ होती है, राइट, इनकी तरबियत इन स्कूलों के अंदर होती है, ये स्कूल जो है ना ये ईमान की मस्बाह गाहें हैं, यहाँ पे स्लॉटर किया जाता है ईमान को, राइट, यहाँ पे कत्ल किया जाता है इखलाक को, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त फायदा हुआ वह इंसानियत को वो तो ये है कि ये स्कूल बंद हो गए, ठीक है। एक साहब जो है वो पिछले दिनों कहने लगे कि बच्चों को जो है ना वो हमने घर के अंदर जो स्कूल के काम के लिए, अब ये स्कूल की इमारतें बंद हो गई हैं ना, लेकिन क्लासें तो ऑनलाइन चल रही हैं, ठीक है, तो ठीक है अभी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, ये भी बस बेहतर है, स्कूल जाने से बेहतर है। बहरहाल तो वो कहने लगे कि जी जो हमारे बच्चों को स्कूल की काम की वजह से हमें लैपटॉप देना पड़ रहा है ना, तो उस लैपटॉप के ऊपर मैंने वो पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया है, ठीक है। तो पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसने ना सारी चीज़ों को बंद कर दिया लैपटॉप में, अब आप जो है ना ब्राउजिंग कर सकते हैं, ना आप चैटिंग कर सकते हैं, ना आप जो है वो फलाना काम कर सकते हैं, आप सिर्फ स्कूल का असाइनमेंट कर सकते हैं लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हो गया, स्कूल बच्चे जो है ना वो लैपटॉप के अंदर कोई गलत काम नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि स्कूल बंद है, ठीक है ना, तो इस वजह से ना आपका ये पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहा है। अगर स्कूल खुले होते हैं ना तो आपका बच्चा अगले दिन स्कूल जाता और स्कूल जा करके वो सारी टिप्स एंड टेक्निक सीख करके आता कि इस पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे डिसेबल किया जाता है, ठीक है। पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन दूसरे बच्चे जो है ना ये सिखाते हैं फिर आपके बच्चे को कि कैसे इसको हैक किया जाता है, कैसे इसको डिसेबल किया जाता है। वो तो शुक्र करें स्कूल बंद है, इस वजह से उसको ये आइडियाज कहीं से मिल नहीं रहे, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह फोन भी बंद किया हुआ है कि वो अपने दोस्तों को हर वक्त फोन घुमाने की उसको इजाजत नहीं है, वरना फोन पे किसी से सीख लेता कि कैसे पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर को डिसेबल करते हैं, ठीक है ना। ये जो जितने चैट दुनिया जहाँ के अंदर, ट्विटर के अंदर, और ना जाने ये जो सारे सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह हैं, इनके ऊपर सारी टिप्स एंड टेक्निक्स लिखी हुई होती हैं, सब कुछ ये लोग शेयर करते हैं। हर दुनिया में हर बंदा जो वो सीखता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे गंदी बात हो, वो सब जो है वो अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है ना बड़ी आसानी के साथ ट्विटर वगैरह के ऊपर जा करके इन पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि नहीं हमने तो ये सॉफ्टवेयर लगा दिया, तो अब बच्चे हमारे महफूज हो गए, ठीक है। बहरहाल तो उनको यही समझाया था कि अल्लाह का शुक्र अदा करें स्कूल बंद हो गया है, वरना एक दो दिन के अंदर आपका बच्चा इसको डिसेबल करने का तरीका सीख करके आ जाता, ठीक है। तो एहतमाम करने के लिए ना पूरे माहौल का इंतजाम करना पड़ता है, इसके बगैर जो है काम नहीं चलता। अच्छा, इसके बाद फिर पहला वस्फ क्या था, तो इन 13 वस्फों में से पहला वस्फ था इबाद होना, तो इसके बारे में हम काफी तफसील पढ़ चुके हैं। तो अब दूसरी सिफत से शुरू करते हैं, यमशूना अलल अर्दी हौना, कि यानी चलते हैं वो जमीन पर तवाजो के साथ। अच्छा, हम दूसरी सिफत भी एक्चुअली पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ना, अगर कोई मुझे करेक्ट कर दे, दूसरी सिफत हमने पढ़ी थी किसी के पास अगर नोट किया हुआ है तो, मेरे ख्याल में पढ़ ली थी। आगे चलते हैं, तीसरी सिफत, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तीसरी सिफत, वइज़ा खाफ़हुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, यानी जब जहालत वाले, अल जाहिलून जहालत वाले उनसे खिताब करते हैं तो वो कहते हैं सलाम। यहाँ जाहिलून का तर्जुमा जहालत वालों से करके, ठीक है, यानी जो हमारे मशायख हैं, ठीक है, उन्होंने जाहिलून का तर्जुमा लफ्ज़ जाहिल से नहीं किया। जाहिल का मतलब क्या होता है, जिसके पास इल्म नहीं है, ठीक है। तो मशायख जो है ना वो उनकी अल्लाह ताला के साथ बहुत मजबूत निस्बत होती है, बहुत मजबूत निस्बत, तो जिसकी मजबूत निस्बत होती है ना वो मकसूद को समझ जाता है, मकसूद समझ जाता है, ठीक है, और जिसकी निस्बत नहीं होती है वो मकसूद को नहीं समझता, वो सिर्फ जाहिरी बुनियाद पर ही उस यानी चीजों को समझने की समझता है, ठीक है। कहने का मकसद क्या कि जैसे मिसाल के तौर पर, खाली एक मिसाल है कि आपके घर के अंदर ना माशाल्लाह आपकी बेटी है, ठीक है, वो बेटी जो है वो बहुत माशाल्लाह नेक है, परहेजगार है, अच्छी है, फरमा बरदार है, वो आपके साथ काम काज के अंदर घर के शामिल रहती है, ठीक है ना। तो अब जब आप उसको कोई काम कहती हैं तो वो जो है ना वो आपका मकसद समझ लेती है कि अम्मी चाहती क्या है मुझसे करवाना, तो वो ना पूरा काम करके आती है, आपका बड़ा दिल खुश होता है, ठीक है ना, आपका बड़ा दिल खुश होता है कि मेरी बच्ची ने पूरा मेरी बात समझ ली और काम को मुकम्मल करके आई, ठीक है ना। अब कोई जो है वो आपके बहन की बेटी भी घर आई हुई है फॉर एग्जांपल, घर में टाइम गुजारने के लिए, थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है ना। अब आपने उसको भी वही काम कहा जो कि आपने अपनी बेटी को कहा था, लेकिन उसकी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ जाहिरी तौर पर, अब मुझे मिसाल उसको जहन में नहीं आ रही कोई किसी काम की मिसाल, घर में और क्या, खैर काम तो एक से एक हो सकता है। तो जो बच्ची थोड़ी देर के लिए आपके घर में आई हुई है ना, वो आपके मकसूद को नहीं समझ सकी, उसने सिर्फ जो है ना वो, अच्छा हाँ, चाय लाने के लिए कहा आपने फॉर एग्जाम्पल। आपकी जो बेटी थी वो जब चाय लेकर के आई ना, तो वो एक खास मग में लेकर के आई जिसके अंदर आप चाय पिया करती हैं, और साथ साथ जो है ना आपको शौक है कि जी चाय के साथ जो है ना मुझे फलाने पापे भी खाने होते हैं, बिस्किट भी खाने होते हैं, तो आपकी बेटी जो है वो बिस्किट और वो मग इन सब चीजों का ख्याल करके चाय लेकर के आई, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो सिर्फ उसको ये कहा था कि बेटा मेरे लिए चाय ले आओ, ठीक है। अब यही बात जब आपने अपने बहन की बेटी से कहा कि बेटा मेरे लिए चाय ले आओ, तो वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची थी, लेकिन उसने जो है वो चाय बनाई और चाय लेकर के आ गई किसी भी मग के अंदर जो उसको मिला किचन के अंदर, ठीक है ना। तो वो आपका पूरा मकसूद नहीं समझ सकी, जबकि आपकी जो बेटी थी उसने आपका पूरा मकसूद समझ लिया। भाई क्या फर्क है आपकी बेटी में उस और उसके अंदर, फर्क क्या है कि इसने आपका पूरा मकसूद कैसे समझ लिया, उसने आपका पूरा मकसूद क्यों नहीं समझा। जाहिर सी बात है बहुत फर्क है। क्या फर्क है कि ये आपकी सोहबत में रहती है, आपकी बेटी आपकी सोहबत में रहती है, आपकी बेटी का आपके साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता है। इस रिश्ते की वजह से वही अल्फाज जो कि आपने अपनी बेटी को कहे थे, उन अल्फाज से उसने पूरे मकसूद को समझ लिया, लेकिन वही अल्फाज आपने अपनी बहन की बेटी को कहे थे, उसने आपका पूरा मकसूद नहीं समझा, क्योंकि वो आपकी सोहबत में नहीं रहती, उसका आपके साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। हालांकि अल्फाज दोनों के सेम कहे थे। यही मामला जो है ना वो हमारा और बशायर का होता है कि हमारा ना अल्लाह ताला के साथ वो मजबूत निस्बत का ताल्लुक नहीं है, हम अल्लाह ताला की सोहबत में, क्या मतलब सोहबत क्या होती है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की सोहबत होती है अल्लाह ताला का जिक्र करना, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला के का जिक्र करता है ना वो अल्लाह ताला की सोहबत में बैठता है, ठीक है ना। अना जलीसुम मा मन जकरनी, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि मैं हम जलीस होता हूं यानी साथ बैठने वाला होता हूं उस शख्स का जो कि मेरा जिक्र करता है। तो जो मशायख होते हैं अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह ताला के हम जलीस होते हैं, तो हम जलीस होने की वजह से अल्लाह की सोहबत में होते हैं, और अल्लाह की सोहबत में होने की वजह से ना वो अल्लाह ताला का मकसूद समझते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ अपने कलाम में कहना क्या चाहते हैं। जबकि हम जैसे लोग, वो भी चले शौक तो रखते हैं अल्लाह का कलाम पढ़ना, अल्लाह ताला के कलाम को सीखना, लेकिन हमें अल्लाह ताला की सोहबत और हम जलीसी नसीब नहीं होती है ना, इस वजह से हम उन्हीं अल्फाज को जो है वो डिक्शनरी की बुनियाद पर ट्रांसलेट करते हैं, और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा मकसद समझ पाते हैं, असल मकसद नहीं समझ पाते। तो देखें जो असल मकसद समझने वाले लोग होते हैं ना, तो वो फिर मुख्तलिफ तरीके से तर्जुमा करते हैं इस लफ्ज़ का, ठीक है। मकसद आपको जो है ना वो ये समझाना था कि जैसे जैसे हमारी निस्बत बढ़ेगी ना, जैसे जैसे हमारा ताल्लुक मजबूत होगा, वैसे वैसे असरार और रमूज हमारे ऊपर खुलना शुरू होंगे, ठीक है ना। फिर हमें असल मकसद समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें सिर्फ जो है ना वो कुरान पढ़ लेना और जो है वो उसका तर्जुमा पढ़ लेना, ये हमारा मकसूद नहीं है। असल में हमारा मकसूद है अल्लाह ताला के साथ गहरी निस्बत का बनाना, ताकि हम अल्लाह ताला के मकसूद को समझ सकें कि अल्लाह ताला, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, ठीक है ना। तो ये निस्बत के बगैर ये मकसूद हासिल नहीं होता, इसके लिए पहले निस्बत को मजबूत बनाना पड़ता है। तो इनकी निस्बत मजबूत है, कोर्स हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया। कैसे किया? जहालत वालों से किया। तो वही बता रहे हैं कि इसका तर्जुमा जहालत वालों से करके ये बात वाज़ह कर दी गई है कि मुराद इससे बेइल्म आदमी नहीं है, बल्कि वो जो जहालत के काम और जाहिलाना बातें करे, वाकई में वो जी इल्म भी हो, यानी पढ़ा लिखा भी हो, बहुत उसने किताबें पढ़ी हुई हो दुनियावी भी और दीनी भी, तो इसका मतलब है कि वो इल्म वाला तो है, لیکن باتیں جو ہے نا وہ جہالت والی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ شخص مراد ہے جو جہالت والی باتیں کرے. لفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں ہے بلکہ سلامتی کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی عرفی سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کسی کو کہنا, یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, یہ سب عرفی سلام ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ تم مسلمانوں کو اس طریقے سے سلام کیا کرو. بلکہ تو یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ سلامتی کی بات مراد ہے, کیونکہ جو عرفی سلام ہے وہ آپ ہر ایک کو کر بھی نہیں سکتے. غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام جو ہے نا یہ مخصوص ایمان والوں کے لیے ہے, یہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے, جیسے کہ آج کل بڑے خصوصاً انڈیا میں جب سے یہ پولیٹیکل حالات وغیرہ پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر ذرا مصیبت پڑی ہے, گورنمنٹ لیول کے اوپر مصیبت پڑی. تو پہلے تو انڈیویجول لیول پہ تو پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا کبھی کبھی, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر تو اب مسلمانوں کو بڑی فکر ہو گئی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے کافروں کے ساتھ بیہیو کریں, ہندوؤں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں, ہے نا, وہ چیریٹی بھی یاد آ گئی ہے سب کو, اور جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے بھی بہت لگانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے نا وہ ان کو چونکہ ان کے ساتھ دوستیاں بنانی ہیں, ان کو جو ہے خوش رکھنا ہے تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں حکومت کے خلاف, وہ ہمیں پناہ دیں حکومت کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف, تو اب وہ جو جی میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی میں پھر یہ بھی ہے السلام علیکم کسی ہندو کو کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو بھائی ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کر سکتے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے. اس کی ایک وجہ کہ السلام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے سلامتی ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں السلام علیکم کہہ کر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کافر کو نہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے, جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے, اس کو آپ اس طرح سے سلامتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو سلامتی کی بات ہے یہاں پر مراد, یعنی یہ ایک بہت ہی روحانی قسم کی چیز ہے. دنیا کے اندر آپ ان کے ساتھ پیس کے ساتھ رہتے ہیں, امن کے ساتھ رہتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, امن کے ساتھ رہنا, ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی خیر خواہی کا معاملہ کرنا, یہ الگ چیز ہے. وہ تو کرنی ہے ہم نے کافروں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, سب کے ساتھ کرنی ہے, اور صرف جو ہے وہ حالات خراب ہونے کے اوپر نہیں کرنی ہے, بلکہ یہ تو ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے مسلمان کی, کہ اس نے یعنی مسلمان ہو یا کافر اس کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو فار ایگزامپل جیسے کہ ہندوستان میں آج کل ہو رہا ہے نا, تو یہ نہیں ہے کہ وہ عمل غلط ہو رہا ہے, عمل تو صحیح ہو رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ اب جو ہے نا وہ بہت چیریٹی اور بہت ان کو یعنی جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت اچھا کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا جا رہا ہے, بہت اچھا کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر صرف ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیت کیا ہے اس کے اندر. رائٹ, نیت کی درستگی کے ساتھ یہ عمل کریں گے فائدہ ہوگا, اگر نیت غلط ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اب نیت کی درستگی کیا ہے اور نیت کا غلط ہونا کیا ہے؟ نیت کی درستگی یہ ہے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کرنا تھا, ہم نے نہیں کیا, ہم غلطی کے مرتکب ہوئے, ہم گناہگار ہوئے, اب ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اب ہم وہ کرنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ, خیر خواہی کا معاملہ, مدد کا معاملہ, حسن سلوک کا معاملہ, اب ہم وہ کرنا شروع ہو رہے ہیں, اپنے پچھلی زندگی کے گناہ پر توبہ کر کے, نادم ہو کر کے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے اچھی, یہ ہے صحیح نیت. اور غلط نیت کیا ہے؟ غلط نیت آپ بتا دیں, انڈیا کے اتنے سارے لوگ تو ادھر موجود ہیں, غلط نیت وہ بتائیں تو زیادہ اچھا ہے. غلط نیت کیا ہے؟ یہ جو مائگرنٹ ورکرز کے ساتھ اتنا احسان و سلوک کا معاملہ کیا جا رہا ہے, احسان کا سلوک کیا جا رہا ہے, تو اس میں غلط نیت کیا ہے جی, ذرا آپ بتائیں. डर के मारे कोई बता नहीं रहा है, कोई देख लेगा पकड़ लेगा आकर, इतना भी खौफ नहीं होना चाहिए यार। ये गलत नियत क्या है? पब्लिसिटी, अभी तो जान पे बनी हुई है पब्लिसिटी वगैरह सब भूल गए, अभी तो जान पे बनी हुई है, तो पब्लिसिटी इज नॉट द राइट आंसर। गलत नियत क्या? एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम देम, व्हाट रिटर्न्स? जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो वो हमें बचाएंगे, वो हमारे दुश्मनों का साथ नहीं देंगे, वो हमारा साथ देंगे, हमें पनाह, हमें पनाह देंगे, ठीक है, कि वो भी हमें हेल्प करेंगे, उनकी हिमायत लेने के लिए ये सब करना। जी बिल्कुल, 100% ये गलत नियत, ठीक है ना। ये जो है ना, वो ये है ना कि वो हमें पनाह देंगे, वो हमें बचाएंगे इन लोगों के खिलाफ, ये खाली यानी गलत नियत कहना समझ में नहीं आता कि इसके अंदर क्या बुराई है। इसमें इतनी बुराई है कि ये अल्लाह ताला की गैरत को ललकारने के बराबर है, अल्लाह की गैरत को ललकार, इसलिए कि पनाह अल्लाह ने देनी है, ठीक है ना, हिफाजत अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ताला की हिफाजत के बगैर कोई हिफाजत नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, कोई पनाह नहीं दे सकता। तो एक मुसलमान जब किसी से पनाह की तवक्को रखता है ना, और उससे जो है वो यानी नेकी उसके साथ इसलिए करता है कि वो मेरी मदद करेगा, ये यानी बहुत बड़ा मसला है ये, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं होता, ये तरीका काम करने का नहीं है, बल्कि इस तरह करें कि भाई ये तो हमें पहले भी करना चाहिए था, ये तो हमारे दीन का हिस्सा था, जो कि हमने आज तक नहीं किया, तो उसके ऊपर हम नादम और शर्मिंदा हैं, और अब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला को खुश करने वाली नीयत है, अल्लाह ताला की रजा वाली नीयत है, क्या मसला है इसके अंदर? खाली एक दिल का एहसास ही है ना, ये एक जहन की सोच ही है ना खाली, जिसको कि ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो बस, तो इसी वजह से ना ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, ये काम उस वक्त खैर का सबब बनेंगे जब ये मशायख की निगरानी में हो रहे हो, क्योंकि मशायख के यहाँ नीयत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो अगर मशायख की निगरानी के अंदर आप ये काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आपकी नीयत जो है ना, वो आपके मशायख ठीक कर देंगे, वो बार बार इन चीज़ों का आपको एहसास दिलाएंगे, बार बार ये चीज़ें आपको याद दिलाएंगे, और आपकी नीयत जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर दुनियादारों के साथ मिल करके ये वाले काम हो रहे हैं ना, माइग्रेंट वर्कर्स की मदद और चैरिटी का काम और ये काम, तो दुनियादारों के यहाँ तो नीयत का कोई तस्वीर ही नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं होता कि नीयत होती क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो फिर वहां पर यही होगा कि जी आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, कल को ये हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उर्फी सलाम मुराद नहीं है, यानी उर्फी सलाम आप काफिरों को तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो सलामती की बात मुराद है, जो कि आप काफिरों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुर्तुबी ने नुहास से नकल किया है कि इस जगह सलाम तस्लीम से मुश्तक नहीं है, यानी इसके जो रूट वर्ड्स हैं या इसके जो जरंड है ना, ING फॉर्म, जेरंड या मस्दर बुनियाद, वो तस्लीम नहीं है बल्कि तसल्लुम से ये डिराइव्ड है। मुश्तक का मतलब होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सलाम का लफ्ज जो है वो तसल्लुम से मुश्तक है, जिसके मानी है सलामत रहना। जो अरबी जानने वाले लोग हैं, ग्रामर जिन्होंने पढ़ी हुई है, तो उनको पता है तसल्लुम जो है वो बाब तफाउल से आता है, ठीक है ना। और बाब तफाउल के अंदर जो खासियत, एक खासियत होती है वो बाहमी मामला करना, ठीक है ना, कि वो किसी को मार रहा है, वो इसको मार रहा है, वो किसके साथ अच्छा मामला कर रहा है, ये उसके साथ अच्छा मामला कर रहा है, या ये कि जैसे कि इन्होंने फरमाया कि मुराद ये है, यानी बाहमी मामले का मतलब यहाँ पर क्या है, मुराद ये है कि जाहिलों के जवाब में वो सलामती की बात कहते हैं जिससे दूसरों को ईजा ना पहुंचे और ये गुनाहगार ना हो, ठीक है। यानी मतलब इसका क्या हुआ कि अगर कोई जाहिल इनसे जहालत वाली बात करता है ना, ठीक है, तो ये सलामती का जवाब देते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है, रफाए शर वाला जवाब देते हैं। तो इस रफाए शर वाले जवाब के बदले में क्या वो जाहिल आदमी भी इनके साथ सलामती वाली बात करना शुरू कर देता है? नहीं, ऐसा तो अमूमी तौर पर नहीं होता, ठीक है ना, कि आप किसी जाहिल के साथ अच्छा मामला करें, वो फौरन जो है वो आपके साथ भी अच्छा मामला करना शुरू करते हैं। किसी जाहिल शख्स को नेकी पर आमादा करना जो है ना, ये इसमें वक्त लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता कि बस एक जुमला आपने उससे कहा और वो एकदम से नेक बन गया और आपके साथ अच्छा हो गया, ठीक है ना। एकदम से ऐसा तो नहीं होता ना, बल्कि इसमें तो बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, तब कहीं जाकर के उसका रवैया तब्दील होता है और वो फिर आपके साथ अच्छा हो जाता है। यहाँ पर तो बात हो रही है कि ये जो उसके जाहिलाना बात का जवाब देते हैं ना, तो ये जो जवाब होता है ना, ये ऐसा जवाब होता है कि ये उस जाहिल को की तरफ भी सलामती होती है और वही सलामती इनकी तरफ भी पलट के आती है, ठीक है ना। यानी ये जो इबादुर रहमान होते हैं, जब ये जाहिलों को अच्छा जवाब देते हैं तो वो अच्छाई जो है वो जाहिलों तक भी पहुंचती है, क्योंकि इनकी तरफ से सलामती वाली बात है जो कि जाहिलों जाहिलों तक पहुंची, ठीक है। और इन फिर पलट करके भी इनकी तरफ भी सलामती आती है, ठीक है ना। तो इनकी तरफ पलट के सलामती कैसे आती है कि ये गुनाहगार नहीं होते, ठीक है ना, बल्कि इनको नेकी मिल रही होती है, तो उसको भी खैर मिल रही है, इनको भी खैर मिल रही है। उसको जो है वो दुनियावी तौर पर खैर मिल रही है, इनको उखरवी तौर पर खैर मिल रही है, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पर जो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, कि सलामा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये तसल्लुम से मुश्तक है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बाहिमी सलामती, ठीक है। जिसको बोला जा रहा है उसके लिए भी सलामती और जो बोल रहा है उसके लिए भी सलामती, ठीक है, बाहिमी सलामती। और ये इंशाल्लाह जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है उनको कम से कम ये बात समझ में आएगी, और जो नहीं पढ़ चुके हैं तो उनसे माजरत के, ये जरा सी प्रैक्टिकल बात होती है। अच्छा आगे चलते हैं कि यही तफसीर हजरत मुजाहिद और मुकातिल वगैरह से भी मनकूल है। हासिल ये है कि बेवकूफ़ जाहिलाना बातें करने वालों से ये हजरात इंतकामी मुआमला नहीं करते, बल्कि उनसे दरगुजर करते हैं। ठीक है, तो मुंह दर मुंह जवाब देना जिसको हम कहते हैं, तो ऐसा इनका मामला नहीं होता। जरूरी नहीं है वैसे कि आप जवाब भी दें, अगर कोई आपके साथ ना ऐसा मामला कर रहा है ना, तो जरूरी नहीं होता कि अब आप भी रिटर्न में कुछ कहें, बल्कि जैसे कि आपने सुना हुआ होगा कि खामोशी भी जो है ना वो बेहतरीन जवाब होता है, ठीक है ना। खुसूसन जो ऐसे लोग होते हैं जिनका के जरा मीटर घुमा हुआ होता है, ठीक है ना, उनका थोड़ा दिमाग जो है वो बिल्कुल ही आउट हुआ होता है ना, तो अगर आप उनको जवाब देते हैं ना, तो इससे ना उनकी आग और भड़कती है और फिर वो और ज्यादा शर के ऊपर आमादा हो जाते हैं, बल्कि फिर वो तकलीफ भी पहुंचाना शुरू हो जाते हैं, इवन फिजिकल तकलीफ भी, ठीक है ना। तो कभी जो है ना वो खामोश रहना भी अच्छा जवाब होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी का मीटर इतना घुमा हुआ हो कि अगर आप खामोश रहे ना तो फिर वो आपको मारेगा, ठीक है ना। तो ऐसे शख्स को जो है वो खामोश रह करके जवाब नहीं देना, बल्कि ऐसे शख्स को कोई अच्छी सी प्यारी सी बात कह करके उसको जवाब दे देना, ठीक है ना। तो ये तो मौके के मुनासिबत से फिर इंसान को फैसला करना होता है कि जी इंसाफ के साथ खामोशी इख्तियार करनी है या इंसाफ को जो है वो कोई अच्छा सा जवाब देना है। अगर कोई जाहिल नहीं है फिर उनको जवाब दे सकते हैं, फिर उनको जवाब दे सकते हैं, अगर कोई जाहिल नहीं है, क्या मतलब, यहाँ पर तो जाहिलों की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पर लेकिन ऊपर क्लियरिफिकेशन इन्होंने दी है ना कि जहालत का काम करने वाला, ठीक है, यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि वो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो मुराद है ही नहीं, पढ़ के अनपढ़ आदमी मुराद नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो कोई भी आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन वो जहालत की बातें करने पर आमादा हो जाए उस वक्त, ठीक है ना, तो वो मुराद है। तो अब जब ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे दे दी है, तो फिर आपका सवाल जो है ना वो इस वजह से मेरे समझ में नहीं आ रहा, भाई अगर वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो इस वक्त बात तो जाहिल वाली कर रहा है ना, तो तो उसको जो है ना वो आप सलामती वाला जवाब दे दें बस। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब तो इसके तफसीर के अंदर मौजूद है। अगर कुछ और कहना चाह रही है तो उसको मेरे सामने रिवर्ट करके फिर सवाल करें। अच्छा, चौथी सिफत, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब जाहिर है सूरतें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मेरे जहन में भी आ सकती हैं, लेकिन अब वो हर सूरत का मैं आपको जवाब देना शुरू कर दूँ तो इससे बेहतर ये है कि आप खुद ही सूरत सूरत मसला बयान कर दें तो उसके हिसाब से फिर आप जवाब देते रहें। अच्छा, तो चौथे सफ़र में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी वो रात गुजारते हैं अपने रब के सामने सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। इबादत में शब बेदारी का जिक्र खुसूसियत से इसलिए किया गया कि ये वक्त सोने आराम करने का है। इसमें नमाज व इबादत के लिए खड़ा होना खास मुशक्क़त भी है और इसमें रिया व नमूद के खतरात भी नहीं है। यानी रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उस वक्त उठ जाना और इबादत के लिए खड़े हो जाना तो बहुत मुश्किल काम होता है ये, और कोई देखने वाला भी नहीं होता, तकरीबन सारे लोग ही सो रहे होते हैं। बहुत कम होता है भाई ऐसे कराने कि जिनके अंदर जो है वो माशाल्लाह तहज्जुद के लिए तीन चार लोग खड़े हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही खड़ा होता है या बहुत हो तो दूसरा खड़ा होता है। अच्छा, इसके अंदर भी बड़ी मज़े की तरतीब है हमारे मशायख के यहाँ कि हमारे मशायख है ना, इसके अंदर तहज्जुद के वक्त में अकेले खड़े होने का कैसे एहतमाम किया। ठीक है, कि अगर मियाँ बीवी दोनों तहज्जुद पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका कैसे इंतज़ाम करते थे, अकेले खड़े होने की उनके यहाँ इतनी अहमियत होती थी कि पहले शौहर जागा, ठीक है, शौहर तहज्जुद पढ़ के फारिग हो गया, फिर बीवी को जगाया, फिर बीवी खड़ी हुई, उसने तहज्जुद पढ़ी। ठीक है भाई, क्यों दोनों एक साथ ही खड़े हो जाते तहज्जुद पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन इस बात का एहतमाम किया कि तहज्जुद के वक्त में तो अकेले इबादत करना जो है ना वो यानी तहज्जुद की असल तो अकेले ही इबादत करना है। ठीक है, तो अगर किसी दूसरे ने खड़ा होना भी है तो पहले खुद फारिग हो गए, फिर उसके बाद उनको उठा दिया और इस वक्त जाकर ये सोने चले गए, ठीक है, ताकि फजर से पहले जो है वो थोड़ी नींद हो जाए। तो रिया और नमूद के खतरात भी नहीं है कि भाई कोई भी नहीं देखने वाला होता तो इसके अंदर रियाकारी कैसी। नामो नमूद का मतलब होता है शोहरत वगैरह। मंशा ये है कि उनका लैल व नहार अल्लाह की ताअत में मशगूल है। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी मंशा, जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि अपनी निगाहों को झुकाना, ठीक है ना, तो इसमें मंशा क्या है। मंशा ये है कि गलत चीज की तरफ नहीं देखना, मंशा निगाहों को झुकाना नहीं है। ठीक है ना, कि भाई वो स्कर्ट पहनी हुई थी तो निगाहों को झुकाया तो उल्टी उनकी टांगे ना नजर आनी शुरू हो गई, तो निगाहों को झुकाना मंशा तो नहीं हुआ ना, मंशा तो हुआ निगाहों को बचाना, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा में हजरत ने मंशा, ठीक है ना, मकसूद मकसूद ये है दिन रात अल्लाह की इबादत, उनके लैलो नहार अल्लाह की अताअत में गुजरते हैं। ठीक है ना, ये बात आपकी क्लास के अंदर और भी जरूरी क्यों है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारी खवातीन हैं कि जिनके घरों के अंदर छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनके जो है वो लैलो नहार जो है वो खाने पकाने और बच्चों को संभालने और उनको सुलाने, और आजकल तो वैसे भी स्कूल बंद हैं तो स्केड्यूल्स भी आउट हुए हुए हैं, राइट। तो अब वो कि जी हम तो जो है तहज्जुद कैसे पढ़ें और हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं और हम तो फिर इबादुर रहमान में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, और इस किस्म की है ना, ये एक होती है ना, कुछ लोगों को फालतू की भी बहुत सारी बातें लग जाती है ना, ये कुछ तो बात करनी है तो अब उन्होंने फालतू की बहुत सारी बातें करनी होती है, हालांकि कॉमन सेंस भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए ना। ठीक है, कि भाई आपकी मजबूरी है ना, आप नहीं पढ़ सकती है ना, तो आप अपने दिल के अंदर तमन्ना रखें तहज्जुद पढ़ने की, आप इस्तराब रखें कि अगर मेरे हालात ऐसे, जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे तब मैं तहज्जुद पढ़ा करूंगी। ठीक है ना, खामा खा के रोने धोने से तो काम नहीं बनता ना, रोने धोने में कोई मकसूद होना चाहिए, कोई असल होनी चाहिए ना उसकी, तो इस वजह से ना ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर मंशा को समझना है। ठीक है ना, मंशा ये है कि लैल व नहार अल्लाह की अताअत में मशगूल है, ठीक है ना, अगर आपके बच्चे जो है वो आजकल के हालात की वजह से जल्दी नहीं सो पा रहे हैं, तो आप कहाँ से तहज्जुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर आपने अगर सुबह उठ करके क्लासेस भी लेनी है, या तो खुद पढ़ना है या फिर पढ़ाना है, या फिर सुबह को जो है वो आपके घर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको के नाश्तों की भी आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना, उनके लिए पराठे भी बनाने होते हैं और उनके लिए आपको जो है वो ये सारी हरकतें भी करनी पड़ती हैं, तो फिर कहाँ से आप जो है वो यबीतूना लरब्बिहिम कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, सुजदा व क़यामा में कैसे आपकी रात गुजरेगी, ठीक है ना। तो भाई आप सो जाएं, ठीक है ना, आप सो जाएं अल्लाह ताला की अतात की नीयत के साथ सो जाएं, और सुबह को अल्लाह की अतात की नीयत के साथ उठ जाएं, ठीक है ना। ये है असल मंशा, ठीक है ना, खाली जो है वो टक्करें मारना जो है वो मंशा नहीं है, ठीक है। तो फरमाया कि दिन को तालीम व तबलीग और जिहाद फी सबीलिल्लाह वगैरह के काम है, रात को अल्लाह के सामने इबादत गुजारी करना है, ठीक है। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह वो लोग करते थे, हम तो करते भी नहीं है, हमारी तो वैसे ही वो क्या क्या आदत फरमाते हैं कि अगर हम जरा लंबा रुकू कर लें, लंबा रुकू कर लें, तो फिर समिया अल्लाह लिमन हमिदा की बजाय उही अल्लाह निकलता है ना, समिया अल्लाह लिमन हमिदा भी नहीं पढ़ा जाएगा, फिर उही अल्लाह कर करके जो है वो वापस आएंगे। तो ये तो हमारे हालात हैं, हम तो ब्रॉयलर मुर्गी खाने वाले लोग हैं ना, ब्रॉयलर मुर्गी है ना, फार्म की मुर्गी, तो जिसको खा खा करके पता ही होगा ना आपको कि वो हड्डियों के जो है वो अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है और आर्थराइटिस जो है वो पैदा होता है, ठीक है ना। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो 60 साल की उम्र के बाद कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, और हम में से तो कितने जो कि 35 साल की उम्र में जो है वो खुद कुर्सी पे नमाज पढ़े होते हैं, 40 साल की उम्र में जो है ना वो सीढ़ी चढ़ने से उनके यानी हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो हालात तो बहुत मुख्तलिफ है ना, अब तो हमारे कितने जानने वाले हैं जो कि 30 साल, 32 साल, 35 साल हार्ट अटैक हो गया है ना, हार्ट अटैक के मरीज मौजूद हैं 30-30 साल के उम्र के अंदर, बल्कि उससे भी कम के अंदर, ठीक है। तो अब कोई कहे कि नहीं जी सहाबा भी तो जिहाद किया करते थे और साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, तो भाई सहाबा के फिर हालात भी तो उसके मुताबिक हुआ करते थे ना। बहरहाल तहज्जुद पढ़ने की जो जो यानी चाहत है भाई, चाहत में तो कुछ नहीं जाता ना, आर्थराइटिस जो है वो आपकी चाहत को तो नहीं रोक सकता ना, राइट, आपके जो बाकी जो घर के हालात हैं वो आपकी चाहत को तो नहीं खत्म कर सकते ना, चाहत तो एक दिल की मामला है ना, ठीक है। तो दिन को तालीम व तबलीग और जिहाद की सबीलिल्लाह वगैरह के काम हैं, और रात को अल्लाह के सामने इबादत गुजारी करना है। तहज्जुद की नमाज की हदीस में बड़ी फजीलत आई है। तिर्मिजी ने हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामुल लैल तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि वो तुमसे पहले भी सब नेक बंदों की आदत रही है, और वो अल्लाह ताला से तुमको करीब करने वाली और सय्यात का कफारा है और गुनाहों से रोकने वाली चीज है। अच्छा, किसी ने प्राइवेटली मैसेज लिखा है तो वो पढ़ना होगा ताकि आप लोग सुन लें कि, या फिर इशा की नमाज के साथ तहज्जुद की नफिल पढ़ लें। हाँ, ये आगे आ रहा है, ठीक है। तो तहज्जुद के फजाइल में ये हदीस मुबारक का नकल किया है कि तुमसे पहले सब नेक बंदों की आदत रही है और अल्लाह ताला से तुमको करीब करने वाली और सय्यात का कफारा है, गुनाहों से रोकने वाली चीज है, ठीक है। तहज्जुद जो है ये एक नफली इबादत है, ठीक है, ये फर्ज नहीं है, तो जिसके फर्ज ही पूरे ना होते हो तो उसको फराइज की फिक्र करने की जरूरत है, और जिसके फर्ज पूरे होते हो तो फिर वो नफलों की फिक्र करे, नफलों को अदा करने की कोशिश करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि तहज्जुद पढ़े और फजर की नमाज का अदा हो जाए। अच्छा, आगे फरमाया कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस शख्स ने इशा के बाद दो या ज्यादा रिकतें पढ़ दी वो भी इस हुक्म में दाखिल है कि बाता लिल्लाही साजिदा व काइमा, ठीक है। बाता यबूतु का मतलब होता है रात को जागना, रात को यानी जागना, सजदा करते हुए और क्याम करते हुए उसने रात गुजार दी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर ली तो تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات کی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ ہے پہلی بات مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت کی نماز تو عورتوں پر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو عورتیں جماعت کی نماز پڑھیں گی کیسے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو حدیث ہے یہ صرف مردوں کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر مسجد کی نماز کا نہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کے اندر جماعت کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی خاص طور پہ آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل کے طور پر سامنے آیا ہے، جس کا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جی مسجد کی نماز ایک الگ چیز ہوتی ہے، جماعت کی نماز الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جماعت کی نماز جو ہوتی ہے وہ مسجد کے علاوہ بھی ہوتی ہے، مصلی میں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد جو ہے نا وہ ایک الگ جگہ ہوتی ہے، باقاعدہ ایک، اور مسجد کی فضیلت اپنی جگہ پر، وہ ساری وہ مسجد گھر گھر میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے، محلے میں آپ یعنی آپ اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد تو خاص مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں اس کام کے لیے، وہاں پہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، اس کو اس مسجد کو جو ہے نا وہ آپ توڑ کر کے جو ہے وہ کوئی پلازا بھی نہیں بنا سکتے، کوئی دکان بھی نہیں بنا سکتے، کوئی گھر بھی نہیں بنا سکتے، ایک دفعہ وہ جگہ یعنی ڈیزگنیٹ ہو گئی مسجد کے لیے، ٹھیک ہے نا، اب وہ پکی ہو گئی مسجد کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو گھر کے اندر تو آپ ایسا نہیں کر سکتے نا کہ گھر کے اندر کسی کمرے کو آپ مسجد ایسا بنا دیں کہ اب اس جگہ پر آپ کچھ اور نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا، تو گھر ایک گھر کا مصلی الگ چیز ہوتی ہے اور مسجد ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مسجد کی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے، یہاں پر جماعت کی نماز کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ مردوں کے اوپر جماعت کی نماز کم از کم سنت مؤکدہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ واجب کے حکم میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے کہ جماعت کی نماز کیسے ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو باقی آدھی رات عبادت کرنے والا سمجھا جائے گا اگر اس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی ہے۔ اچھا، کیا آپ نے کہا کوئی خاص عمل جس سے قیام اللیل کی پابندی ہو؟ او بہت آرزو ہے، کوئی خاص عمل، ایک تو دعا کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا جو حدیث مبارکہ کے اندر ایک عمل آتا ہے وہ ہے کہ دوپہر کے وقت نا قیلولہ کرنا، ٹھیک ہے، تو قیلولہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس سے تہجد میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہو گئی اصل باتیں، ٹھیک ہے، کہ قیلولہ میں کرنے سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے، لیکن قیلولہ تو کر رہے ہیں اور رات کو جو ہے وہ 2 بجے سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں، 1 بجے سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی وہ والا قیلولہ تو پھر فائدہ نہیں دے گا نا، کہ جس کے بعد پھر رات کو 1-1.5 بجے آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی رات کو سونے کا بھی تو معاملہ یہی تھا نا کہ جی عشاء کی نماز پڑھ کر کے جلدی سو جاؤ، ٹھیک ہے، تو ہم تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہماری رات شروع ہوتی ہے اس کے بعد۔ مصلی نساء بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں شامل نہیں، ہاں مصلی نساء جو ہے وہ مصلی نساء، مسجد نساء نہیں کہا جاتا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک، کیونکہ وہ مصلی ہوتا ہے، وہاں پر پھر حیض کی حالت میں بھی عورت جا سکتی ہے، مسجد میں تو نہیں جا سکتی۔ اچھا، بریک یا 5ویں صفت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی بریک دے دیں گے جب تک آپ کو اس کے بعد حدیث کی کلاس شروع ہوگی۔ اچھا، 5ویں صفت کی، اچھا ہم جو ہیں خلاصہ تفسیر ساتھ ساتھ ابھی نہیں پڑھتے جا رہے ہیں اس کو، تو اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ کیچ اپ کرنا ہے، کیونکہ اس میں بھی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسری جو آیت تھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خلاصہ تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور جو باوجود ادائے حقوق اللہ و حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کانا غراما، ٹھیک ہے، تو یہ تیسری آیت تھی عباد الرحمن کے تحت، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خلاص و تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ باوجود ادائے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد کے، اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے، غرامہ، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ مستقر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، اور مقام کا مطلب تو اردو میں بھی ہم قیام کرنے کی جگہ کو مقام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت پھر جو معروف مسائل میں پانچویں صفت لکھی ہوئی ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں آج کی کلاس میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سے لے کے اس آیت کے آخر تک، یعنی یہ مقبولین بارگاہ، یعنی یہ جو عباد الرحمان ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے، بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جس کے لیے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی جاری رہتی ہیں نا۔ یعنی یہ لوگ جو ہے وہ خوب اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدد بھی مانگتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی دعا کرنے کے بعد دوا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم خالی اس کے لیے دعا تو نہیں کرتے نا، بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کے بعد دوا بھی کرتے ہیں۔ دوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ دوا کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ اسباب اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی میڈیسن لیتے ہیں، کوئی پریکاشنری اسٹیپس لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ آج کل جیسے وہ پہلے تو وہ کھانسی وغیرہ ہو جاتی تھی تو کھانسی کے جو ہے وہ شربت کیا کرتے تھے، کاف، کیا کہتے تھے، کاف سیرپس۔ کاف سیرپ تو اب ایسی ختم ہو گئی ہے کہ نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ کاف سیرپس لیتے تھے، اب کیا کرتے ہیں؟ اب کاف سیرپ نہیں لیتے، اب جو ہے نا کوئی ایسی کوئی گولی شولی نہیں کھاتے، بلکہ اب نیبولائزر لیتے ہیں، ہے نا، انہیلرز لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بظاہر کوئی ایسی کھانے والی دوا نہیں ہوتی، لیکن یہ انہیل کرنے والی دوا ہوتی ہے، یعنی یہ سارے اسباب ہیں۔ تو ہم صرف دعا سے کام نہیں چلاتے بلکہ اس کے بعد دوا بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے نا وہ ایون عبادت کے اندر بھی اور یعنی دین کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کے بعد دوا بھی کرنی ہوتی ہے، یعنی اسباب بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی انہوں نے لکھا کہ عملی کوششیں بھی ان کی جاری رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن ان سب کو کرنے کے باوجود جو رزلٹ ہے نا، رزلٹ، وہ رزلٹ جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی موقوف ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد دوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شفا، شفا تو نہ تو آپ کی دعا میں لازمی ہے کہ جی دعا مانگ لی تو اب مرض دور ہو جائے گا، نہ تو آپ کی دوا کے اوپر منحصر ہے کہ دوا کر لی تو اب مرض دور ہو جائے گا۔ بھائی مرض کا دور ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر ہی ہے نا، مرضی کے اوپر ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو دل میں ہمیشہ ایک رہتا ہے نا خوف، دل میں ایک فکر رہتی ہے نا کہ میں نے دعا بھی اتنی کر رہی ہے اپنے بچے کی صحت کے لیے، میں نے دوائیں بھی اتنی اچھی اچھی کر لی ہیں اپنے بچے کی صحت کے لیے، لیکن پتہ نہیں اس کو شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہے نا، رہتا ہے نا ہمیشہ ایک کھٹکا رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے، خصوصاً جب زیادہ بیماری ہو تو، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ بندے بھی سب کچھ کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دوائیں بھی کرتے ہیں، یعنی عبادتیں بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے لیے نا ان کو ہمیشہ ایک خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خوف جو ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بدگمانی کی ریزن، یعنی اس کی وجہ بدگمانی نہیں ہوتی اس خوف کی، بلکہ وجہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنے اعمال کی کم آئیگی، اپنے اعمال کی جو ہے نا وہ کہ کوئی حیثیت نہ ہونا، کہ میرے اعمال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عاجزی، انکساری، یہ خشیت، ٹھیک ہے نا، یہ وجہ ہوتی ہے ان کے خوف میں رہنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ ठीक है, तो यही जो खशी, इसी को खशियत कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला जो है ना वो मेरे नामाल को कबूल करके मेरी बख्शिश करेंगे कि भी नहीं करेंगे, तो इसको खशियत कहते हैं। और खशियत के बारे में आप में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बताया हुआ है पहले कि खशियत जो है ना ये है गारंटी ऑफ सक्सेस विद अल्लाह सुब्हान ताला, ठीक है ना, अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की गारंटी। अगर आपसे पूछा जाए भाई किस वो कौन सा वाला वो अमल है कि जिससे बंदे की कबूलियत कंफर्म है, तो क्या अमल होता है? नमाज पढ़ना है कि भाई नमाज एक ऐसा अमल है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा ना तो ये कंफर्म है कि वो जन्नत में जाए। नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। कुरान पढ़ता है, कंफर्म है वो जन्नत में जाएगा? नहीं, कुरान पढ़ना कोई ऐसा अमल नहीं है कि वो कंफर्म जन्नत में जाएगा। सबका खैरात करता है, कंफर्म है कि जन्नत में जाएगा? नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिहाद करता है, कंफर्म है कि जन्नत में जाएगा? नहीं, कोई कंफर्म नहीं है कि जन्नत में जाएगा, है ना। तो जितने अमल आप गिन लें कोई किसी अमल के साथ कंफर्मेशन नहीं है, हत्ता के यानी इल्म हासिल करना कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा। इल्म सिखाना दूसरों को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कबूलियत भी हो जाएगी और जन्नत में भी जाएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला के साथ कंफर्मेशन क्या है कबूलियत की? खशियत, डरते रहना, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रजा की गारंटी है, और ये कुरान अजीम शान से ही साबित है, रजी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, के अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह ताला से राजी हैं। जालिका ये कौन लोग हैं? लिमन खशिया रब्बा, ये वो लोग हैं जो कि अपने रब से डरते रहते हैं, ये अपने रब से डरते रहते हैं ना, इनको अल्लाह ताला की रजा मिल जाती है, और अल्लाह ताला की रजा जो है ना ये फिर जन्नत की गारंटी होती है, ठीक है। तो कुछ भी करें लेकिन साथ साथ जो है ना वो खशियत को चेक करते रहें कि मेरे अंदर खशियत भी है कि नहीं है, ठीक है ना। और अगर खशियत नहीं है ना और बाकी सारे अमल चल रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी की बात है कि ये तो फिर जिंदगी भी लगा दी किसी काम के लिए और फायदा भी ना हुआ। क्या लिखा है आपने, ये आयत आपके आगे पीछे हो, यानी जो आपका सवाल है आगे पीछे हो गया होगा, जिसके अंदर वर्ड्स होती है अप्लाई, हजरत जी फिर ये आयत कहाँ पर? ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून की जो आयत है वो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक से ज्यादा जगहों पर फरमाई है ना कि उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होता और उनके ऊपर कोई गम नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी एक एप्लीकेशन दुनिया के लिए है, दुनिया के अंदर ना उनके ऊपर कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है, ठीक है ना। तो ये दुनियावी मामलात में उनको खौफ नहीं होता दूसरों का, ठीक है, कि कोई उनको जो है वो कुछ कर देगा, कोई उनको नुकसान पहुंचा देगा, है ना, ये दुनियावी चीजों का खौफ नहीं होता उनको, ठीक है। और यहज़नून, ला यहज़नून का मतलब ये है कि जो चीजें यानी उनको नहीं मिली होती हैं, ठीक है ना, उस मिसाल के तौर पर कोई चीज आपको नहीं मिली तो उसका गम नहीं होता कि भाई मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, ठीक है ना। तो अंदरूनी गम से भी वो महफूज होते हैं दुनिया की जिंदगी में, और बैरूनी खौफ से भी वो महफूज होते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला की नाराजगी का खौफ ये यहाँ पर मुराद नहीं है, ठीक है, कि उनको अल्लाह की नाराजगी का भी खौफ नहीं होता कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा। नहीं भाई, ये तो जो लोग होते हैं ना जिनके ऊपर ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको अल्लाह की नाराजगी का खौफ तो हर वक्त रहता है, आखिर वक्त तक रहता है, ठीक है ना। तो एक तो एप्लीकेशन इस आयत की है दुनिया की जिंदगी से मुताल्लिक, ठीक है, उसका ये मतलब है, ओके। और दूसरी इसकी एप्लीकेशन है इस आयत की आखिरत की जिंदगी से मुताल्लिक, यानी जब ये जन्नत में पहुंच जाएंगे ना तो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उनके ऊपर कोई खौफ कोई हुज़्न नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, आप क्लास को रोकना जरूरी है ताकि आप दूसरी क्लास शुरू हो सके। अस्सलाम वालेकुम।